सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धे सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयर्यौ वैच्छाय साहुगणे वन्द्य सम्मतं शरणं चरितलब्धिं परोहेम। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं और उसमें आए हैं पृष्ठ संख्या 21 पर। लब्धिसार भूमिका का प्रकरण अपना चल रहा है। यहाँ जो कुछ पारिभाषिक शब्द है और कितने ही जो कुछ विधान है उसका बहुत स्थूल रूप से यहाँ वर्णन चलेगा, और इसका जो विस्तार है वो जहाँ उसका विषय आएगा वहाँ उसकी अधिक चर्चा होगी। अभी तक हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से 10 करण देखे, कौन से है 10?
हाँ
हाँ, बहुत अच्छा, इसकी हमने चर्चा विस्तार से की थी। यहाँ अब कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति यही लब्धि है, और वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है तो कि दर्शन चारित्र की लब्धि से मोक्ष, यानी संवर निजरा ये मार्ग है, मोक्ष मार्ग है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संवर कैसे होते कि बंध की हानि से संवर होता है और सत्व की हानि से निर्जरा, ये भी बात हमने कल देखी। अब यहाँ दर्शन चारित्र लब्धि में बंध सत्व की हानि किस विधान से किस प्रकार से होती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं उसमें, ये सभी बातें विस्तार से आने वाली है। तो उसका सामान्य स्वरूप यहाँ कहते हैं और विशेष स्वरूप पंडित जी कहते आगे कहेंगे। अब यहाँ हम पढ़ते हैं नीचे से तीसरा पैराग्राफ पृष्ठ संख्या 21। दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से पहले मिथ्यात्व नरक गति आदि अति अप्रशस्त प्रकृतियों के, लास्ट में जाके कहने वाले के प्रकृतियों के बंध का अभाव होता है। सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है, मिथ्यात्व का बंध का अभाव होता है, और फिर और क्या क्या होता है, अन्य भी जो मिथ्यात्व के या मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधने वाले ऐसे अन्य जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनके भी बंध का अभाव होता है। हमने यह बंध विच्छित्ति का प्रकरण देखा था। पश्चात ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियों के और प्रशस्त प्रकृतियों के बंध का अभाव होता है, जहां जिस गुण स्थान में जहां जो बंध विच्छित्ति है, ये तो केवल क्या होता है उसकी चर्चा यहाँ की। वहाँ प्रकृति बंध क्रम से घटता है उसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं, क्योंकि अपसरण नाम घटने का है। ये प्रकृति बंधापसरण जो शब्द आने वाला है आगे जाके, जब प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होता है तो कितने ही प्रकृतियों का बंध रुकता चला जाता है, प्रायोगिक लब्धि में ही अपसरण ने घटना प्रकृति बंध घटते चला जाता है, उसको कहेंगे प्रकृति बंधापसरण। इन्हें चार प्रकार के बंध मिटने का क्रम कह रहे हैं। चार प्रकार के बंध कौन से देखे थे? हाँ, अनुभव। तो ये प्रकृति विशिष्ट यानी अति अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध पहले रुकता है, फिर अप्रशस्त और फिर प्रशस्त भी। तो उसके जहां जिस गुण स्थान में जो कुछ प्रोसेस होगा तो उसको कहेंगे प्रकृति बंध का घटना। बंध के रुकने की बात चल रही है यहाँ पर, अब प्रदेश बंध की बात करेंगे। प्रदेश बंध योगों के अनुसार होता है, इसलिए योगों की चंचलता हीन होने पर प्रदेश बंध हीन होता है और योग का सर्वथा नाश होने पर प्रदेश बंध का सर्वथा अभाव होता है। यानी सम्यक दर्शन हुआ इसलिए प्रदेश बंध घटेगा कि नहीं घटेगा? वहां तो केवल विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुकेगा, परंतु वहां पर भी प्रदेश बंध ने कितने परमाणुओं का बंध होता है, तो वहां योग ज्यादा है तो वो प्रदेश बंध ज्यादा होगा, योग हीन है तो प्रदेश बंध भी हीन होगा। वैसे देखा जाए तो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में कितने प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, तो जितना जितनी प्रकृतियां बनती है उसमें अधिक प्रदेश आते हैं, ख्याल में है ना? क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। अब स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, ये हमेशा स्थिति अनुभाग जो कषाय के अनुसार बनता है, जब कहते हैं मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, तो कषाय तक के जो सभी जो है बंध के हेतु उसको मिलकर कषाय कहेंगे, सामान्य से उसको कषाय कहेंगे क्योंकि उसमें से कषाय अंतिम जाता है। तो स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, इसका अर्थ है जहां तक कषाय है दसवें गुणस्थान तक है तो वहां तक स्थिति बंध है, वहां जो प्रकृतियां बंधी है उसमें स्थिति बंध वहां तक है। बाद में प्रकृतियों का ही बंध रुकता है, अकेला सातावेदनी रहता है, परंतु उसमें स्थिति का बंध नहीं होता। देखो स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, इसलिए मिथ्यात्व कषाय आदि हीन होने पर स्थिति बंध घटता है। क्या कहा? मिथ्यात्व लिया ना, मिथ्यात्व कषाय आदि यानी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय सबको मिलकर वहां कषाय कह दिया है, तो मिथ्यात्व से नहीं तो स्थिति बंध नहीं होता ऐसा नहीं मानना। क्या कहा? मिथ्यात्व से भी ये सब हो रहा है, यानी जो स्थिति बंध है अनुभाग बंध है, तो हमने देखे थे वहां तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है कि मंद है, उसके उदय भी हमने देखे थे कर्मों में देखना है। कौन से चार देखे थे स्पर्धकों के नाम मिथ्यात्व कर्म के? चार कौन से नाम याद है आपको? अनुभाग की अपेक्षा हमने देखे थे, नहीं ये मोहनी के कहेंगे या दर्शन मोहनी के कहेंगे? अकेले मिथ्यात्व के कहने तो क्या कहेंगे? दारू अस्थि मात्र मिथ्यात्व, वो विषय वगैरह वो उसमें है अघाती मात्र। मिथ्यात्व में से जब सम्यक प्रकृति तैयार होगी वो लता दारू जैसे, हाँ दारू का एक भाग जो है वो सम्यक प्रकृति में, बाकी दारू वो सम्यक मिथ्यात्व के वो नीचे वाले दारू के भाग हुए। और मिथ्यात्व में कौन कौन से है? तो दारू का बहुभाग है, अस्थि और शैल है। परंतु कहते कि ये मिथ्यात्व के कारण जो मिथ्या दृष्टि के जो स्थिति बंध होगा, जहां मिथ्यात्व तीव्र है वहां स्थिति बंध भी ज्यादा होगा। मिथ्या दृष्टि रहते हुए सभी मिथ्या दृष्टि है, उसमें भी जो तीव्र कषाय होगा तो वहां स्थिति बंध ज्यादा होगा, इसलिए वो आदि ले मिथ्यात्व कषाय आदि सब उसमें समझ लेना। तो आदि हीन होने पर स्थिति बंध घटता है, वहां स्थिति बंध का क्रम से घटना स्थिति बंधापसरण है। अब ये कहां घटता है क्या है उसकी बात जब आएगी, यहां तो उसके नाम अलग अलग बता रहे हैं। प्रकृति बंधापसरण ने प्रकृतियों का बंध रुकते चला है, कितने ही प्रकृतियां नहीं बनती। प्रदेश में हमने देखा योग हीन होता है तो प्रदेश भी हीन बनते। स्थिति में कषाय के अनुसार है, जहां कषाय हीन होते चले जाते वहां स्थिति बंध घटता चला जाता है। यदि वो लगातार घटता चला जाए तो हम कहेंगे स्थिति बंधापसरण। पहले जितना स्थिति बंध होता था उससे विवक्षित काल में जितना स्थिति बंध घटा उतने प्रमाण वाला वहाँ स्थिति बंधापसरण जानना। क्या कहा? पहले विशिष्ट बंध होता था, अभी घटकर नया बंध होने लगा। मान लेते लगातार इतना 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 बंध होता था, इतना, फिर उसमें कटौती हो गई, अभी इतना 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 बंध होगा अंतर्मुख। तो ये जो घट गया ना, मान लेते पहले 1000 साल थे और फिर 800 साल इतने ही बंधे, तो 200 साल कटौती हो गई। अपसरण कितने का होगा? 200 का। और नया बंध कितने का हो रहा है? तो 800 का। तो उतने प्रमाण वाला वहां स्थिति बंध अपसरण जानना। 22 पृष्ठ पर आए तथा घटने के पश्चात जितना अवशेष रहा उतना वहां स्थिति बंध जानना। घटकर नया स्थिति बंध एकम हीन प्रमाण वाला हुआ। स्थिति बंधापसरण होने पर जितने काल तक समान स्थिति बंध होता है उसे स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। यानी लगातार एक अंतर्मूर्त तक कितना बंध हुआ, एक समय में हुआ, दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे अंतर्मूर्त तक हुआ, फिर अपसरण हुआ, फिर जो घटकर अभी जो स्थिति बंध होने लगा, एक समय में, दो समय में, तीन समय में, इससे अंतर्मूर्त में उतना का उतना हुआ समान लेवल का स्थिति बंध, फिर कटौती होगी। तो ऐसे स्थिति बंध बंधा का अपसरण होता चला जाएगा, यहाँ कटौती होगी, अंतर्मूर्त के बाद फिर कटौती होगी, फिर अंतर्मूर्त के बाद होगी, परंतु अंतर्मूर्त तक लगातार इतना का इतना रहा उसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण काल। यहाँ दृष्टांत, अभी यहाँ पर भी बताएंगे। जैसे पहले 1,00,000 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध होता था, उससे 1,000 वर्ष प्रमाण स्थितिबंधापसरण हुआ, कटौती हुई 1,000 की, तब अवशेष 99,000 वर्ष मात्र स्थितिबंध रहा। ये ख्याल में आई बात? स्थितिबंधापसरण काल के पहले समय में इतना स्थितिबंध हुआ, इतना ही दूसरे समय में हुआ, ऐसे ही स्थितिबंधापसरण काल के अंतिम समय तक समान स्थितिबंध होता रहा। पहले कितना था? 1,00,000 वर्ष का, उसमें 1,000 वर्ष की कटौती हो गई तो उतना अपसरण हुआ। अभी 99,000 जितना लगातार अंतर्मूर्त तक स्थितिबंध हुआ, फिर उसमें कटौती हो जाएगी। पश्चात 800 वर्ष मात्र अन्य स्थितिबंधापसरण हुआ, कटौती 800 वर्ष की हुई। 99,000 में से 800 गए, तब 98,200 वर्ष मात्र अवशेष स्थिति बंध रहा। वह उस स्थिति बंधापसरण काल के प्रथमादि समयों में उतना समान स्थिति बंध हुआ करता है। यानी जो घटकर जो स्थिति बंध नया होता है लगातार अंतर्मूर्त तक उतना का उतना होता है, फिर कटौती हो जाती है। इसी तरह यथासंभव प्रमाण जानकर उसका स्वरूप जान। इस तरह स्थितिबंध घटते घटते अपने विच्युत्य होने के समय में जघन्य स्थितिबंध होता है। जहां बंध रुकता है वहां जाके उसका स्थितिबंध का प्रमाण जो है सबसे अल्प होगा। पश्चात स्थितिबंध का नाश है, प्रकृति ही नहीं बनती है तो यहाँ स्थिति का भी नाश होगा, स्थिति बंध का। आयु बिना सर्व कर्मों में ऐसा क्रम जानना, आयु का स्थिति बंधापसरण नहीं होता। क्या लिखा है? अभी उसका कारण भी बता, क्योंकि नरक बिना 3 आयु का स्थितिबंध विशुद्धता से अधिक होता है। अब जहां दर्शन चारित्र लब्धि चलेगी, अन्य कर्मों का स्थितिबंध घटते चला जाता है, और यदि वहां पर आयु बनती है तो अधिक आयु बंधेगी, क्योंकि जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां लंबी आयु बंधेगी, वो बनती नहीं रहती है। जब कहीं उसका बंधने का काल आता है, अभी वो तो जब हम कहेंगे तो कर्ण लब्धि आदि में या प्रायग लब्धि में ही कितने वो आयु का बंध वगैरह डूब जाता है, उसकी चर्चा जब उसका विषय आएगा तब होगी। और अन्य सब शुभाशुभ प्रकृतियों का स्थिति बंध। क्या क्या कौन सी, शुभों का लिया कि अशुभ का, दोनों का स्थिति बंध में दोनों की बात करते हैं। अनुभाग बंध में उल्टा पुल्टा होगा, जहाँ विशुद्धि ज्यादा वहाँ प्रशस्त कर्मों में अनुभाग ज्यादा और अप्रशस्त में कम, जहाँ संकलेश ज्यादा वहाँ अशुभ यानी अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा और वहां बंधने वाली प्रशस्त में अनुभाग कम। अब यहाँ कहते हैं अन्य सब शुभाशुभ प्रकृतियों का स्थिति बंध संकलेशता से बहुत होता है और विशुद्धता से अल्प होता है। जहाँ विशुद्धि अधिक वहाँ बंध कम हुआ स्थिति बंध, और जहाँ संकलेश अधिक वहाँ स्थिति बंध अधिक होगा। ये स्थिति की बात ख्याल में आई, ये स्थिति की बात तो समझना आसान भी है, अनुभाग कभी कभी थोड़ा प्रश्न पड़ता है। अब अनुभाग की बात करेंगे, अनुभाग बंध ये बंधने की बात चल रही है, सत्व की नहीं। सत्ता में यानी बंध के बाद उसमें क्या क्या होता है तो जहां का विषय आएगा वहां उसकी चर्चा होगी अधिक से। अनुभाग बंध पाप प्रकृतियों का संकलेशता से बहुत और विशुद्धता से अल्प होता है। तथा पुण्य प्रकृतियों का संकलेशता से अल्प और विशुद्धता से बहुत होता है। यथायोग्य जहां जो प्रकृतियां बनती है वहां यही नियम है। इसलिए अनंत गुणा या यथासंभव घटता और बढ़ता अप्रशस्त और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अधिक हीन क्रम से जैसा जहां पाया जाता है वैसा वहां जानना, यानी वो अनुभाग बंध घटता है या बढ़ता है। अनंत गुणा तक जो हाँ विशुद्धि बहुत बढ़ रही हुआ तो अनंत गुणा बढ़ेगा, इसमें प्रशस्तों में बढ़ेगा, अप्रशस्तों में घटेगा। कितना घट गया कहेंगे तो अनंत गुणा घटा कहेंगे। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अधिक होने से आत्मा का कुछ बुरा नहीं होता, क्योंकि संसार में रहना तो स्थिति बंध के अनुसार होता है। क्या कहा, तो प्रशस्त प्रकृतियों की लंबी स्थिति बनना अच्छा है ना, ये संसार में रहने का कारण है स्थिति बनना। घाती कर्मों से आत्मा का बुरा होता है और घाती कर्म अप्रशस्त ही है, इसलिए दर्शन चारित्र की लब्धि से प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग की अधिकता अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग की हीनता होती है। क्या कहा, पहले में पहले क्या कह रहे हैं, घाती कर्म कैसे है अप्रशस्त ही है, क्यों, उनसे आत्मा का बुरा होता है। अब कहते हैं जब दर्शन और चारित्र की लब्धि से, दर्शन और चारित्र की लब्धि का अर्थ होता है दर्शन लब्धि यानी समय दर्शन प्राप्त होना, चारित्र लब्धि यानी देश चारित्र और सकल चारित्र आदि की प्राप्ति होना। तो उससे क्या होता है कि प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग में अधिकता होती चली जाती है और अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग उसकी हीनता होती है। वहां कषायों का अभाव होने पर अनुभाग बंध का सर्वथा अभाव होता है। कषायों का अभाव कौन कौन से गुणस्थान में है, नितिन भाई आपको याद है क्या, क्या भूल गए, कषाय नहीं है ऐसे गुणस्थान कौन से, हाँ 11, 12, 13 और 14, इसमें से बंध कहाँ तक है, कौन सा, ज्ञानावरण का, मैं स्थिति बंधी की बात नहीं कर रहा, कोई भी बंध, दसवें के बाद कोई बंध नहीं है, कौन सा है, ज्ञानावरण दसवें तक है, अश्विन में आपको नहीं बोलना है, हाँ सातवें, ये जो नए लोग हैं ना अभी सुबह तो हम लोग यही की यही बातें करते हैं, इनको जरा साथ में ले ले। तो वहाँ साता वेदनीय कर्म बनता। यहाँ क्या लिखा है, कषायों का अभाव होने पर अनुभाग बंध का सर्वथा अभाव होता है। तो ग्यारहवे वाले को, बारहवे वाले को और तेरहवे वाले को साता वेदनीय बनता है। तो तेरहवे तो अर्यंत है, साता वेदनीय बांध रहे हैं, तो कितना प्रशस्त प्रकृति है ना, तो अनुभाग बहुत बांधते होंगे। एक समय में निकल जाते हैं, परंतु बहुत अच्छा अनुभाग वाला होगा ना, गुड़ खांड शर्करा अमृत वाला अनुभाग होता होगा उसमें। क्या कहते हैं वीरेश भाई, क्या कह रहे हैं? कषाय नहीं तो क्या नहीं होता, अनुभाग बंधन नहीं होता। क्या लिखा,
अनुभाग बंधन
नहीं होता। किसको नहीं होता? हाँ, तो ग्यारहवे बारहवे और तेरहवे गुणस्थान वाले जीव साता वेदनी का बंध तो कर रहे हैं, परंतु उसमें थोड़ा तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो कहते उसमें अनुभाग बंध ही नहीं होता, स्थिति बंध भी नहीं होता। एक समय में बंधे, दूसरे समय में नो मोर। हाँ, तो उसको कहेंगे कथन में तो दो अपेक्षा थी, उसी समय गए कहेंगे या दूसरे समय में गए कहेंगे, कथन के लिए कोई प्रकार नहीं है, परंतु उसमें ना स्थिति बनती है ना अनुभाग बनता। इस प्रकार बंध के अभाव से संवर होने का विधान जानना। ये जो बंध का अभाव चारों प्रकार से बताया, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, कहाँ कौन सा अभाव हो जाता है उसकी बात चली है। तो कहते वो संवर हो जाता है। तो सुशीला बहन परिपूर्ण संवर, परिपूर्ण संवर कौन से गुणस्थान में? चौदहवे में, क्योंकि वहां वो साता वेदनीय भी नहीं बन रहा है। प्रकृति का तो बंध है, वहां प्रदेश का तो बंध चल रहा है, और वहां प्रदेश बंध ज्यादा है कि कम है? अभी तो पूरे, पहले तो सात या आठ में डिवाइड होता था, अभी पूरा का पूरा समय प्रबंध अकेले साता वेदनी में आ रहा है। तो प्रदेश सबसे ज्यादा है और अनुभाग जरा भी नहीं है, तो फल बहुत मिलता होगा कि नहीं उनको? देखो बंध के अभाव से संवर होने का विधान जाना। उन्होंने पहले बताया था कि बंध और सत्व की हानि से, यानी संवर और निर्जरा कैसे होते हैं, तो बंध की हानि से संवर होता है और सत्व की हानि से निर्जरा होती है। अब आगे पढ़ेंगे। अब सत्वनाश का क्रम कहते हैं। देखो सत्वनाश यानी सत्ता में से नाश होना। केवल बंध रुक गया है या उदय रुक गया है, इसलिए सत्ता में से नाश होने का कोई सवाल नहीं है। जब तक सत्ता में से नाश होगा तभी हम कहेंगे उस कर्म का वहां अभाव हो गया। दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से, ये जो हम लब्धि सार पढ़ने जा रहे हैं, तो ये लब्धि क्या हुई, जीव को क्या फायदा हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो अपने में दर्शन और चारित्र की लब्धि हुई, यही उसका फायदा है, परंतु कर्म में क्या क्या बातें होती है, ये ज्ञान का विषय है, निमित्त का या कथन है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से पहले मिथ्यात्वादी अति अप्रशस्त प्रकृतियों का, पश्चात ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियों का और प्रशस्त प्रकृतियों का सत्वनाश होता है। वह सत्वनाश स्वमुख उदय से और परमुख उदय से दो प्रकार होता है। अब इसको समझेंगे। क्या कहा पहले में, पहले दर्शन और चारित्र के निमित्त से क्या होता है, तो मिथ्यात्वादी अति अप्रशस्त प्रकृतियों का सत्वनाश होता है। सत्वनाश यानी सत्ता में से नाश होता है। तो मिथ्यात्वादी प्रकृतियां सत्व में से चली जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, सत्ता में से नाश हुआ, शायिक समय दर्शन हुआ। तो मिथ्यात्वादी यानी कौन कौन सी प्रकृतियों का नाश हुआ नलिन भाई? बहुत अच्छा, सात प्रकृतियों का सत्वनाश हो जाता है, तो जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है, तो उसको दर्शन लब्धि कहेंगे हम। अति अप्रशस्त, अति अप्रशस्त, सबसे पहले उसका सत्वनाश होता है। अब कहते पश्चात ज्ञानावरणादि और प्रशस्त प्रकृतियों का, अभी तो यहाँ तो ये तो सपनासार में तो डिटेल बातें आने वाली है, कहाँ कौन से प्रकृतियों का क्षय होता है। हमने देखे नौवे गुण स्थान में पहले वो तो आठ कषायों का भी होता है, अन्य 16 प्रकृतियों का भी होता है वैसे वैसे, और 12वें में जाके ज्ञानावरण आदि का भी होता है, और प्रशस्त प्रकृतियों का सत्वनाश होता है। ये हो गई ना अपनी बात, सत्ता की विच्छित्ति वगैरह भी हमने देखा था। आगे लिखते हैं सत्वनाश स्वमुख उदय से या परमुख उदय से दो प्रकार का। स्वमुख उदय जिस प्रकृति का नाश होना है तो अपने रूप से ही उदय में आकर नष्ट होती है, उसको कहेंगे स्वमुख उदय से नाश होता है। परमुख उदय से नाश होता है वो संक्रमित होकर अन्य प्रकृति रूप होते होते नष्ट हो जाती है तो उसको कहेंगे परमुख उदय से नाश होता है। तो मिथ्या तो प्रकृति स्वमुख से नाश होती है कि परमुख से? सुशीला बहन, मिथ्या तो प्रकृति स्वमुख उदय से नाश होती है कि परमुख उदय से? स्वमुख से, यानी मिथ्यात्व का उदय होता रहे और मिथ्यात्व अनुष्ठान चलता रहे और जीव शाही समयदृष्टि हो जाए तो कैसे होगा? स्वमुख से होगा। तो उदय किसका चल रहा है तभी? जब जब जीव शाही समयदृष्टि होता है तो उदय किसका चल रहा है? हाँ बोलो। शाही समयदृष्टि जब होता है यानी जब उसका कार्य चल रहा है, जब सम्यक प्रकृति यानी जब शायिक का प्रोसेस शुरू हुआ तो उदय किसका चल रहा था? सम्यक प्रकृति का। तो मिथ्यात्व का नाश कैसे हुआ? मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होकर नष्ट हुए, फिर सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति रूप होकर ऊपर मुख से उदय में आकर नष्ट हुआ। और सम्यक प्रकृति कैसे नष्ट होगी बोलो? स्वमुख से, क्योंकि उसका अंत समय तक उसका उदय चलेगा, वो निकल जाएगी अधिक मात्रा में, निर्जरा होगी, वो स्वमुख से चली जाएगी। अभी यहाँ चारित्र की बात नहीं तो क्षपना सारादि में आगे चलेंगे हमने, क्रोध के परमाणु मान रूप होकर नष्ट हो जाएगी, मान के माया रूप होकर नष्ट हो जाएगी, माया के लोभ रूप हो, अब सभी लोभ रूप हो, लोभ अपने रूप से स्वमुख से उदय में आकर नष्ट होगा। आपका प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि? हाँ, वो उसको उसको सत्व का अभाव तभी जिसको उद्वेलना हम कहेंगे उसको। नहीं नहीं, मिथ्यात्व रूप टर्न होकर उदय में आई ऐसा नहीं कहेंगे हम उसको, इसलिए नहीं कहेंगे कि वो मिथ्यात्व रूप हो गई है और पड़ी रहेगी वैसे ही, यानी वो जैसे अभी क्षपणा में क्या प्रोसेस हो जाता है वो परमुख से होते रहते हैं और उसकी अधिक मात्रा में निर्जरा भी होती चली जाती है। यहाँ वो केवल मिथ्यात्व रूप हो गई है, इतना ही लेना। कर्म स्थिति प्रमाण हो, नहीं नहीं नहीं, पूरे उसके कांडक पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कांडक नष्ट हो जाते हैं, सम्यक प्रकृति के सारे मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं एक एक अंतर्मूर्त में। अभी वो तो अंतर्मूर्त में सारा नष्ट हो गया और उसको पल्ले के असंख्यात भाग तक चलता रहता है, एक कांडक भी पल्ले का असंख्यात भाग, और ये कार्य भी कितने उद्वेलना का कार्य पल्ले के असंख्यात भाग तक चलता रहता है। उसके बाद वो टेम्पररी अभाव हुआ है उसका, परंतु उसको नाश नहीं, सत्वनाश ऐसा नहीं कहेंगे हम, अभी तो सत्ता में नहीं। हाँ, परमुख और स्वमुख सपना में लगाना है उसको, जहाँ सत्व का नाश हो जाता है, जैसे अनंतानुबंधी की भी विसंयोजना कहेंगे हम उसको, वहाँ क्षपणा भी नाम नहीं देते हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए उसके नाम अलग है, फिर भी विसंयोजना में भी वो प्रमुख रूप से हो जाता है परंतु सत्ता में पड़ा रहता है। वो पूरा नाश उसका जो हुआ है अभी टेम्पररी नाश हुआ है उसका, यानी प्रोसेस देखने जाए तो वैसा ही है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप से जब टर्न हो रहा है तो मिथ्यात्व का वहां पर उदय है और उदय से भी बंद है, बंद के बिना तो नहीं होगा, वो जिसमें टर्न होना है उसका बंद भी चल रहा है और यहाँ उदय इसे प्रमुख से उदय भी चल रहा है। और ये बात खास करके क्षपणा में लेना है अधिकतर, उद्वेलना वाली जो प्रकृति है उसमें हम कहते ना वो तो पर यानी पर प्रकृति रूप होकर नष्ट हो, इतना ही हम कहेंगे उसको। नहीं 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 ऐसे गड़बड़ी घोटाला नहीं है, नया बंद होता है उसमें से वो नहीं तैयार हो जाते हैं। अभी जब उसका प्रोसेस आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। वहां जो प्रकृति ये बता रहे, जो प्रकृति अपने रूप ही रहकर अपने स्थिति सत्व के अंत निषेक का उदय होने पर अभाव को प्राप्त होती है, उसका स्वमुख उदय से सत्वनाश कहते हैं। स्वमुख उदय से सत्वनाश, जैसे लोभ संज्वलन लोभ क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंत में अपने रूप ही उदय होकर नाश को प्राप्त होता है। ये तो सबको मालूम है, दसवें गुण स्थान के अंत तक उसका उदय है और वहां वो सारे खिरकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्रकृति संक्रमण के वश से अन्य प्रकृति रूप परिणमित होकर अपने अभाव को प्राप्त होती है, उसका परमुख उदय से सत्वनाश कहते हैं। जैसे अनंतानु इसको लिया यहाँ पर, जैसे अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर अनंतानुबंधी कषाय अन्य कषाय रूप परिणमित होकर नाश को प्राप्त होती है, ऐसे ही यथासंभव अन्यत्र जानना। अब अनंतानुबंधी किसमें किसमें टर्न होती है, अश्विन भाई आप अभी आप बोल सकते हो। बारह कषाय का नियम है, मुनिराज उसके विसंयोजन कर रहे, कोई मुनिराज क्यों, क्योंकि जो बनती है उसमें संक्रमण। ये सामान्य कथन है कि अन्य बारह कषाय नौ नौ कषाय चौथे वाले तो ये बात ख्याल में रखें। तो उसका सत्ता में से अभी तो नाश हुआ है टेम्पररी,
जब वो दर्शन मुखी क्षपणा करेगा तो कायम के लिए नाश होगा।
पुनश्च
यथासंभव अन्यत्र जानना, अन्यत्र में किसको,
क्रोध मान माया को पररूप होकर जो संज्वलन क्रोध है वो संज्वलन मान रूप होकर नष्ट हो जाती है, मान है वो माया रूप होता है, पुरुष वेद है वो क्रोध रूप होकर नष्ट हो जाता है, वो सब में लगाना। स्त्री वेद के परमाणु देखो, नपुसक वेद के परमाणु पुरुष वेद में टर्न होते नष्ट होते, स्त्री वेद के परमाणु भी पुरुष वेद में टर्न होकर नष्ट हो जाते हैं। छह नौ कषाय है और पुरुष वेद है वो संज्वलन क्रोध में टर्न होकर नष्ट हो जाते हैं, उनका तो अपना उदय भी नहीं है वहां। क्रोध है वो मान रूप, मान है वो माया रूप, माया है लोक रूप।
हाँ,
दर्शन मौनी में पहले बताया मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हो जाती है, सम्यक प्रकृति का उदय होता है और वो नष्ट हो जाती है। सम्यक मिथ्यात्व के भी परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर नष्ट हो जाते हैं। आपका प्रश्न है उद्वेलना में ये लगाना कि नहीं लगाना, वो तभी तो उद्वेलना ही कही ना उसको। समय मिथ्या तो समय प्रकृति की उद्वेलना होती है और वो पूरा मिथ्या तो रूप से टर्न हो जाता है, तो वो टेम्पररी उसका अभाव हो गया, हम कहेंगे उसको। हाँ करेंगे, या अनंतानुबंधी भी रिवर्सिबल है उसको भी ले लिए। पुनश्च सत्ता के एक एक निषेक के परमाणु एक एक समय में उदय रूप होकर निर्जरित होते हैं। क्या कहा, सत्ता के एक एक निषेक, निषेक समझ में आती बात, सत्ता का निषेक कल परसों ही बात अपनी आई थी, अलग अलग समय प्रबद्धों के एक एक निषेक वहां पड़े हैं, वो पूरे मिलकर सत्ता का एक निषेक हुआ। तो सत्ता के एक एक निषेक के परमाणु एक एक समय में उदय रूप होकर निर्जरित होते नहीं खिरते। यहाँ जो निर्जराकार था वो मोक्ष मार्ग वाली नहीं, निर्जरित होना है नहीं खिरना। अब दर्शन चरित्र के निमित्त से क्या होता है, तो दर्शन चरित्र की लब्धि के निमित्त से ऊपर के निषेक के परमाणु नीचे के निषेक रूप होकर परिणमते हैं। ऊपर के निषेक के परमाणु में यहाँ तो मात्र अपकर्षण रूप थोड़े परमाणु तो उसको नहीं लेना है, स्थिति कांड घात भी होते हैं, ये पूरे निषेक नष्ट होकर नीचे आते रहते हैं। एक बात, दूसरा जो अपकर्षण का प्रमाण हमने देखा था पहले सामान्य अपकर्षण में, वो भी बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। ये क्यों? दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से। वहां एक एक समय में साधिक समय प्रबद्ध की, यानी पहले एक समय प्रबद्ध की निर्जरा ने खिरना होता था, अब साधिक होने लगता है, या अनेक समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है, क्षपक श्रेणी में कहो या उपशम में विशिष्ट स्थान पर जाकर असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा होने लगती है, और बंध समय समय प्रबद्ध प्रति एक एक समय प्रबद्ध का ही होता है। देखो जब कहते हैं अज्ञानी करोड़ों भवों तक तप तपे, तब भी उसकी जितनी निर्जरा होगी यानी जितने परमाणु खिर जाएंगे, निर्जरा नहीं क्या ये खिरना, रेगुलर कितना खिरता है, एक समय में एक समय प्रबद्ध। ज्ञानी की उसकी एक छिन में हो जाती है, क्यों? ज्ञानी ने भी क्षपक श्रेणी वाला कोई ज्ञानी ले लो, मुनिराज है, तो उसकी तो असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा हो जाती है, और उतनी होने के लिए करोड़ों तपों में भवन तक वो तप तपे तो भी उतनी नहीं होती। ये दर्शन और चारित्र लब्धि के निमित्त से ये कार्य हुआ। क्या कहा? क्योंकि उसके तो बंध भी एक समय प्रबद्ध का हो रहा है अज्ञानी का, और वो तप जो कुछ मान लेता है बाल तप को, तो वो कर रहा है तो एक समय ही प्रबद्ध ही खिल रहा है, वहां भी मिथ्यात्व का भी संवर नहीं हुआ है, तो बंध सब चल रहा है। कभी हो सकता है कि कुछ काल की प्रशस्त प्रकृति कुछ बंधेगी, परंतु मिथ्यात्व रूप अति प्रशस्त तो बंध ही रही है, यानी उसके अभी संवर हुआ ही नहीं है, और मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा भी नहीं हुई। विशिष्ट प्रकृतियों का बंध और वो तो उसी समय प्रबद्ध उतने ही प्रमाण में निकलना भी चल रहा है, और उसको लगता है कि मैं इतना तप कर रहा हूं। ये व्यापार में तो बहुत होशियार है, कौन सा करना कैसे करना, नफे में है क्या नुकसान में है, उसका तो हिसाब चलता है ना, दो बार करते ही साहब, एक गवर्नमेंट के लिए, हमने लिए अपने लिए ज्यादा करते, और यहाँ तो सब बेहिसाब है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता ना, तो भरपूर कमाई कर ले कर्मों की। लेकिन न जाने फिर मनुष्य भाव मिले नहीं मैं, फिर एक केंद्र में जाना है तो कमा लो अभी। देखो इसलिए वहां ने दर्शन चारित्र लब्धि में निर्जरा बहुत होती है और बंध अल्प होता है, तभी तो जाके हाँ पूरा बंध का अभाव हो जाएगा और ये सब फिर जाएंगे। अथवा किसी काल में किसी प्रकृति का बंध नहीं है, केवल निर्जरा ही होती है, इस तरह क्या कहा, ऐसा कोई आपको प्रकृति मालूम है, किसी काल में कोई प्रकृति का बंध नहीं और मात्र उसकी निर्जरा ही चल रही है। ऐसा ना ऑर्डिनरी समय दृष्टि ले लो ना, न मिथ्यात्व का बंध है ना अनंतानुबंध, और सत्ता में पड़ा हुआ क्या हो रहा है, अभी वो सम्यक प्रकृति रूप होकर खिर रहा है, अनंतानुबंधी वो अन्य रूप होकर खिर रहा है। जब उदय रूप उदय के नजदीक आता है तो एक समय का वो टर्न होकर उदय में आता है, अन्य रूप होकर उदय में आता है, वहां जो उदय चल रहा है अन्य बारह कषायों का, उस पूरा सत्ता का नहीं टर्न हो रहा है, उदय में आते आते टर्न होकर उदय में आकर नष्ट हो रहा है, यानी उसकी भी फिरना तो चल ही रहा है, यानी सत्ता में से अभी नया बंधन नहीं हो रहा है, ना मिथ्यात्व का ना अनंत अनुबंधी का। और पूर्व में जो बंधा था वो एक एक निषेक के रूप से अन्य रूप होकर टर्न होकर नष्ट हो रहा है, इतना तो कार्य चल ही रहा है उसमें। अब वो अधिक मात्रा में कैसे निषेकों का घात होता है वो तो बात आएगी, स्थितिकांड घात वगैरह की जब बात करेंगे तब तो उसकी बात बताएंगे। और इस तरह सर्व कर्म परमाणुओं का नाश होने पर प्रदेश सत्व का सर्वथा नाश होता है, यानी कर्म परमाणु जो प्रदेश यानी उसके नंबर ऑफ परमाणु हम कहते हैं उसका सत्व नष्ट हो जाता है। पहले उन्होंने कहा था कुछ कुछ प्रकृतियां बनती है कुछ नहीं बनती वगैरह वगैरह, पुनश्च देखो हमने क्या क्या देखा था, सत्वनाश का क्रम देख रहे हैं। तो सत्वनाश में पहले क्या गए कि प्रकृतियों का सत्वनाश कैसे होता है वो बताया, स्वमुख से या परमुख से वो बात आ गई थी ना। उसके बाद प्रदेश सत्व का कैसा नाश होता है वो भी बताया कि बहुत अधिक मात्रा में निर्जरा होने लगती है, बंद रुकता चला जाता है और फिर वो प्रदेश का पूरा नाश हो जाएगा प्रदेश सत्व का। अब कहते सत्व स्थिति सत्व, सत्ता की जो स्थिति पड़ी है, स्थिति बंध बात अलग है स्थिति सत्व बात अलग है। स्थिति बंध यानी नया जो बंध होता है वो कितनी स्थिति वाला होता है उसको स्थिति बंध कहेंगे, और सत्ता में ऑलरेडी जो पड़ा है ज्ञानावरण आदि सभी कर्मों का उसको स्थिति सत्व कहेंगे। जो स्थिति सत्व पाया जाता है उससे एक एक समय व्यतीत होने पर तो एक एक समय घटता ही है, परंतु क्या कहना चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है वो जितना स्थिति सत्व है उसका उससे अधिक भी बांध सकता है। अब ये जो समय दृष्टि है तो वो स्थिति सत्व से कम ही बांधेगा स्थिति बंध, तो ऐसे भी स्थिति सत्व एक एक समय से तो घटेगा ही। अब दर्शन और चारित्र की लब्धि से क्या होता है, ऑर्डिनरी भी क्या होता है, जो कोई समय प्रबद्ध बंधा है वो एक एक समय से तो गल ही जाता है और गलने से उसकी स्थिति कम होती है, परंतु नया नया बनता है तो वो तो बनी रहती है, कभी हीनादिक बांधता रहता है। समय दर्शन होने पर क्या होता है, एक तो स्थिति सत्व बहुत घटता है, वो कैसे घटता है उसको बताएंगे। तो कहते दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से स्थिति कांडक विधान से, क्या कहा, ये स्थिति का घटना स्थिति सत्व का घटना, मैं पूछती हूँ स्थिति बंध का घटना कैसे हुआ था, स्थिति बंध घटा था उसको नाम क्या दिया था याद है, स्थिति बंधापसर। अभी स्थिति सत्व जो है वहां तो बंध घटा तो क्या हुआ, स्थिति तो एक एक समय से ही कम हो रही है, उससे स्थिति में कोई वेरिएशन नहीं होगा, स्थिति बंधापसरण से स्थिति का सत्व में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो तो एक एक समय से कम हो रही थी। तो यहाँ एक और विधान का नाम बताया स्थिति कांडक विधान, या अपकृष्ट विधान से स्थिति सत्व का घटना होता है वहां प्रथम स्थिति कांडक विधान कहते हैं। हम उनकी भाषा में पहले पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगा, यानी स्थिति जितनी थी पहले वो कैसे घटती है, स्थिति का घटना दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से कैसे होता है, तो कहते वहां स्थिति कांडक घात होते हैं। बहुत सारे निषेक एक छोटे अंतर्मुहूर्त में उसका पूरा का पूरा नाश होकर ये सारे परमाणु नाश होते हैं। क्या होता है देखो, कभी भी नाश होते हैं ऐसा ही खत्म होगा ऐसा कभी नहीं होता, नाश जहां तक होगा ये परमाणु जब उदय में आकर फिर जाएंगे तभी उसका कर्म का नाश होगा, अन्यथा कभी भी नहीं होगा। तो हो सकता है अपने रूप से या पर रूप से, यानी कोई संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं, यानी फिर वो संक्रमित हुए परमाणुओं को भी उदय में तो आना ही पड़ेगा, उसके सिवा अन्य कोई रास्ता है ही नहीं है उसके लिए। तो यहाँ जो कहते हैं ना कि अधिक प्रमाण युक्त तो स्थिति सत्व था उसके समय समय में उदय आने योग्य बहुत ही निषेक थे, एक एक समय में उदय में आते, तो क्योंकि हमने देखा था कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक थे, उनमें से ऊपर के कितने ही निषेकों का नाश करके स्थिति सत्व घटाना। हम देखते हैं कि निषेक रचना हम जब बताते हैं, ये स्थिति के निषेक रचना हम कहेंगे, अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के ऐसे निषेक पड़े हैं। ऊपर के कितने ही निषेकों का नाश होना, नाश हुआ तो क्या हुआ, ये सारे इसमें सारे ज्वाइन हो गए। तो इतना जो मान लेते पल्ले का असंख्या तो आ गया, ये यथायुग जितना कुछ घात हो गया था वो सारे परमाणु नीचे आ गए, तो ये नीचे निषेक बड़े बड़े हो जाएंगे और वो उदय में आके खिरते भी चले जाएंगे। तो ऊपर के कितने ही निषेकों का नाश करके स्थिति सत्व घटाना, ये वाक्य पूरा होने के लिए ब्रैकेट में डाला है मैंने कि स्थिति कांडक घात कहलाता है। वहां उन नाश करने योग्य निषेकों के सर्व परमाणुओं को अपकर्षण कहा था, उसमें से थोड़े परमाणु नीचे आते हैं। यहां क्या कहा, जिनका नाश होना है, कांडक यानी वो टुकड़ा, अनेक निषेकों का समूह, उसको हमने कहा कांडक, उसके सभी निषेकों के सभी परमाणु क्या होगा, एक अंतर्मुक्त काल में थोड़े थोड़े करके नीचे आ जाएंगे, नीचे के निषेकों में आ मिलेंगे। तो कहते नाश करने के पश्चात जो अवशेष स्थिति रहेगी, यानी जितने निषेक उस कांडक के नीचे है, उसमें आवली मात्र ऊपर के निषेक छोड़कर अन्य सर्व निषेकों में मिलाते हैं। अभी इसका अर्थ भी देखेंगे। जब जब स्थिति कांडक घात होता है, अपकर्षण में भी हमने यही रूल देखा था कि जिसका अपकर्षण करना है उसके नीचे एक आवली छोड़ देते हैं और उसमें सर्वत्र दिया जाता है। अभी ये कांडक के इतने तो कांडक रूप से नष्ट होने वाला है, तो उसके नीचे के यहां तक का कांडक ग्रहण किया हमने, उसके नीचे ये दो हम आवली कहेंगे, इसको छोड़ देना और ये सारा नष्ट होकर इसका माल कहाँ जाएगा, पूरा एक समय दो समय करते करते इस आवली में नहीं दिया जाएगा, नीचे सर्वत्र दिया जाएगा। कांडक के नीचे आवली छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र दिया जाएगा। वहां उन सर्व परमाणुओं में से कितने ही परमाणुओं को पहले समय में मिलाते हैं, कितने ही को दूसरे समय में मिलाते हैं। क्या कहा, पहले समय में मिलाते हैं ना, ये जो नष्ट होने वाले हैं, उसमें से कितने परमाणु नीचे पहले समय में आए, दूसरे समय में आए, इस तरह से अंतर्मूर्त में आ जाएंगे सारे। फिर से पढ़ते हैं, वहां उन परमाणुओं में से जो नष्ट होकर नीचे आने वाले हैं, उनमें से कितने ही परमाणुओं को, कितने ने सब ने थोड़े पहले समय में मिलाते हैं, कहां मिलाते हैं, अन्य निषेकों में मिलाते हैं। ये पहले समय में मिलाते हैं, नीचे के पहले निषेक में मिलाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। कितने ही को दूसरे समय में मिलाते हैं, यानी ये जो कांडक घात का विधान चलेगा, प्रोसेस चलेगा, पहला समय दूसरा समय तीसरा समय ऐसे करते हुए अंतर्मूर्त तक चलेगा। इस तरह यथासंभव अंतर्मूर्त काल तक परमाणुओं को नीचे के निषेकों में प्राप्त कराते हैं। यहां लिखा था ना, पहले समय में मिलाते हैं, नहीं पहले समय में नीचे के निषेकों में मिलाते हैं, वो नीचे के निषेकों में उन्होंने कॉमन डाल दिया सबके लिए, नहीं तो वो पहले समय में मिलाते का अर्थ पहले निषेक में मिलाते ऐसा अर्थ नहीं करना, इसलिए फिर दोबारा स्पष्ट करेंगे। ये बात ख्याल में आई।
दूसरा उसमें से आपने जो कहा ऊपर का है, थोड़े थोड़े होके जाएंगे, माने पूरा निषेक नहीं निकल जाएगा ऊपर का,
एक समय में नहीं जाएगा, अंतर्मूर्त में पूरा जाएगा,
माने पूरा जो टुकड़ा है,
ये टुकड़ा है
साथ में जाएगा,
ये पूरा टुकड़ा ऐसे उसके छिलके निकलेंगे, जैसे हम गन्ना कैसे चीरते हैं, एक एक छिलका निकाला एक समय में, एक समय एक समय, अंतिम समय में ये सब नष्ट होगा, अंतर्मूर्त के अंतिम समय में, तब ये पूरा टुकड़ा निकल गया।
کتنا ٹائم لگے گا, کتنے سمے جائیں گے
اندر میں رکھنا پڑے گا
سمے
سمے وہ تو جگن کا سنکھیا
اس سے زیادہ یتھا یوگی انتر
میں ہمیں یہ کہنا وہ ایک سمے میں نہیں ہوگا
اسنکھیا سمے لگیں گے ہم اس کو ڈیرائیو نہ
لیکن وہ اندر
ہاں درشن چاریتر کی لبدھی کے ابھی لین ہونے کے پہلے بھی استھتی کانڈک ہوتے ہیں پرایوگ لبدھی آدی میں پھر جو کرن لبدھی میں اپورو کرن سے شروع ہو جاتے ہیں پھر سے وہی بات ہے اپورو کرن میں ہوتا ہے یہ اپورو کرن میں یہ کانڈ گھات آدی چالو ہو جاتے آپ کہیں گے آتما میں لین ہونے سے ہوتا ہے ابھی یہاں یہ بات نہیں ہے کوئی سنگی پنچیندریا ستر کوڑا کوڑی ساگر کا بند کر کے ایک اندری میں چلا گیا اور وہاں نیا بند ایک ساگر کا ہوگا اس کو یا اس سے تھوڑا کم تو وہاں بھی استھتی کانڈ گھات ہوتے ہیں ایک اندری کے یوگی استھتی کی جاتی ہے وہاں تو کوئی آتما میں لین نہیں ہے پرنتو اس جیو کے اتنے مند پرینام ہوتے ہیں کہ وہ اس جاتی کے وہاں ہوتے ہیں ایک اندری کے یوگی ہو جاتے ہیں کچھ کتنے اس کے لیے لمبا کال لگتا ہے اسنکھیات ورشوں تک جو ایک اندری میں رہتا ہے بھلے وہ پنچیندری میں سے آیا ہے آتے سمے تو اتنا ستی اتنی اندھک لے کے آیا تھا اب وہاں وہ گھٹاتے 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 ساگر جتنی رہ جاتا اور باقی ستی کانڈ کہاں ہوتے یہ درشن چاریتر کی لبدھی سے ہوتا وہاں ستی کانڈ گھاتی کہتے ہیں ہت سمتپتی کہتے ہیں نا وہ انوبھاگ اور ستی دونوں گھٹ کے چلی جاتی ہت سمتپتی
ایک ایک شبدوں سے پریچت کرا رہے آگے سب آنے والے
وہاں نہیں نہیں ایک سمے میں تھوڑے نہیں آئے دوسرے سمے میں آئے تیسرے سمے میں آئے جو لاسٹ لوٹ رہ گیا ہے وہ انتم سمے میں سب آ گئے تو اوپر جتنے نشیک روپ تھے ایک ایک سمے کر کے آنے میں ان کو کتنے نکل جاتے انتر مورتی نکل جاتے اور یہ کتنے نکلے اسنکھیات نشیک نکل گئے کتنے پلے کے اسنکھیات پہ بھاگ اتنے اسنکھیات ایک ایک سمے میں اگر نیچے آتے تو انتر مورت کے جتنے نشیک ہے اتنے ہی نشٹ ہو جاتے اتنی استھتی گھٹتی ابھی کتنی گھٹی پلے کے اسنکھیات وبھاگ اتنی استھتی گھٹی کتنے سمے میں انتر مورت کا یعنی لمبا کتنا وہ سارا نشیکوں کا جو ہے وہ سب نیچے آ گئے
لیکن اگر سیتی کوڑا کوڑی ساگر کا یا انتر کوڑا کوڑی ساگر وہ تو پلے سے بہت زیادہ ہوا
وہ ایک بڑا استھتی کانڈک پرایوگ لبدھی میں ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے وہی وہ کہتے ہیں بہت سارے پلے نشٹ ہو
جائے
یہ بہت بڑا ستی کانڈک ہو جاتا ہے وہاں پر پرایوگ لبدھی میں ابھی تو متھیا درشٹی ہے پرتھم اوپشن سمے تو ابھی یعنی کرن لبدھی میں بھی انٹر نہیں ہوا ابھویوں کو بھی ایسا ہو سکتا ہے تو وہاں کرموں کی ستی اتنی گھٹ جاتی ہے تو ایک کانڈک میں کتنا بڑا ہو گیا کتنا بڑا کانڈک ہو گیا وہاں کا وہاں انت سمے میں ابھی انتم سمے میں ایک لوٹ رہا ہے نا اوپر کا وہ کانڈک کا لاسٹ ہاں اوشیش رہے سرو پرمانوں کو نیچے کے نشیکوں میں پراپت کرانے پر یعنی ملانے پر ان ناش کرنے یوگے نشیکوں کا ناش ہوا ابھی وہاں ان نشیک ہی نہیں رہے سبھی کے سبھی پرمانو نیچے آ گئے تب جتنے نشیکوں کا ناش ہوا اتنے سمے پرمان ستی ستو وہاں ہین ہوا ستی ستو گھٹ گئے ہے کہ نہیں گھٹ گئے اتنا تھا اتنا سا ہو گیا جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا پرایوگ لبدھی میں وہ لمبا ستی کانڈک گھات ہوتا ہے بہت بڑا تو ستر کوڑا کوڑی کے بعد انتر مورت میں اس نے जो कुछ प्रयत्न किया, क्योंकि अंतर्मूल तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। बाद में वो सम्यक के इस बारे में उसके जो कुछ पांच लब्धि संबंधी चालू हो गए उसके, तो कितना बड़ा कांड किया उसने, वहां से लेकर अंत कोड़ा कोड़ी रह गया। तो इतना कांडक ले लिया उसने, कितने समय में नष्ट हुए, एक अंतर्मूल। तो नष्ट हुए ने क्या हुआ, नीचे के निषेकों में मिले, सत्ता में से चले नहीं गए, यानी स्थिति सत्व यहां घटा। स्थिति बंध जो घटता है उसको स्थिति बंधापसरण कहते हैं। स्थिति सत्व घटने के दो प्रोसेस है, उसमें से एक बताया है स्थिति कांडक घात, दूसरा तो कल देखना पड़ेगा। तब तक तो स्थिति उतनी रहेगी क्यों? हाँ, तो उदय में भी ज्यादा आएगी कि नहीं? तो उदय रूप निषेक में भी अभी माल इतना बढ़ गया, हाँ एक्स्ट्रा आ गया ऊपर, वहां थो था ही था और उसमें एक्स्ट्रा आके मिला, तो उतना तो समय प्रबद्ध से तो अधिक खिरेगा ही खिरेगा निश्चित रूप से। चलो अभी यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता।